तो कृष्ण कथा कहना चाहिए, कुवैत की कथा या अमेरिका की कथा या स्वर्ग या नरक, वो हमारा विषय नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, वो भी हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है भगवान, जिनका नाम है, क्या नाम है भगवान का?
कृष्ण,
श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का क्या मतलब है? कृष्ण का मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण का क्या मतलब?
सर्वाकर्षक।
नहीं, कृष्णा वो नाम का मतलब सर्वाकर्षक, श्री कृष्ण
राधा,
राधा का कृष्ण। सामान्यतः ये श्री शब्द लक्ष्मी, लक्ष्मी को निर्दर्शन करते हैं, परंतु विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में हम समझते हैं कि आदि लक्ष्मी, सर्व लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी। तो ये बहुत ही उच्चनी कथा है। श्री कृष्ण, कैसे कृष्ण? श्री कृष्ण, श्री का मतलब ऐश्वर्य युक्त। तो भगवान कृष्ण का क्या ऐश्वर्य है? तो सब कुछ जो है भगवान की संपत्ति है, भौतिक जगत, वैकुंठ जगत, सब भगवान की संपत्ति है। परंतु वो भगवान जो सब ऋषियों से, सब देवताओं से, सब वैकुंठवासियों से आराधित है, वो सर्वाराध्य, सर्वाराधित, सर्वोच्च भगवान स्वयं की इच्छा से बहुत सरलता में ब्रज धाम में निवास करते हैं और स्वयं मानते हैं कि मेरा ऐश्वर्य पूरे जगत में, सभी जगत, सब ब्रह्मांडों में सब ऐश्वर्य जो है वो मेरा ऐश्वर्य नहीं है। मेरा ऐश्वर्य है श्रीमती राधिका की कृपा। तो ये बहुत ही उच्चनी कथा है। हम अभी इस भौतिक बहिर्मुखी अवस्था में हैं, परंतु व्रज धाम में श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो कैसे इस हाल से, इस स्थिति से हम वहां जाएंगे? यज्ञवान निवर्तन थे तद धाम परम मम, हम उस धाम जाएंगे जिससे प्रत्यावर्तन वापस आना नहीं होते हैं, जिसमें सदैव अपार प्रेमानंद आस्वादन करना है। ये हमारा विषय है। तो वो यात्रा करने के लिए, मतलब हम अभी इसी स्थिति में है और इस स्थिति का मतलब हम यात्रा करते हैं। पुनरापि जननी जठरे शयनम, ये यात्रा हम करते हैं। एक शरीर त्याग करके अर्थात मृत्यु प्राप्त करके हम भौतिक प्रकृति के नियम के अनुसार, भौतिक प्रकृति का बल से हमको दूसरा शरीर प्राप्त करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम हमेशा भ्रमण करते हैं 84 लाख प्रकार की जीव जाति में। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यद्गत वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. एक धाम है, मेरा धाम भगवान कृष्ण का धाम, जिसमें एक बार प्रवेश करके वापस आना नहीं होते. वहां पर भगवान कृष्ण सदैव उनके प्रिय प्रिष्ट भक्तों के साथ रहते हैं, नाचते हैं, लीला विलास करते हैं. वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख की बात भी नहीं है, वो नहीं है और उसके बारे में कुछ धारणा भी नहीं है. वहां पर सदैव सुख अनुभव होते और कुछ नहीं. इस भौतिक जगत में सुख जो है वो केवल दुख का कारण है, दुख का परिणाम है. भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यही संस्पर्श जा भोग दुख योनय एव ते आद्यंत बंत कौंतया नतेषु रमते बुद्धः. कि इस भौतिक जगत में सुख किस प्रकार है, इंद्रिय सुख, स्पर्श जा सुख, मतलब भौतिक इंद्रियों का प्रक्रिया स्थूल पदार्थों के साथ, the interaction of the senses and the sense objects, वो सुख बोलते. हम अच्छा चीज देखता हूं, अच्छा म्यूजिक सुनता हूं, अच्छा खाना खाता हूं, तो यही इंद्रिय जनित सुख. परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं आदि अंत और मध्यम अवस्था में ये इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है, दुख का कारण है. इसलिए बुद्धिमान लोग उसमें नतेषु रमते, रमन आनंद नहीं लेते. तो यही वैकुंठ या गोलोक, गोलोक यात्रा का आरंभ, शुरुआत. तो पहले यही समझना चाहिए कि मैं केवल इस जीवन में नहीं, असंख्य जीवनों में, असंख्य शरीर धारण करके मैंने प्रयास किया सुख प्राप्ति के लिए, परंतु केवल दुख मिलता हूं, क्यों? तो यही प्रश्न है आध्यात्मिक जीवन का प्रवेश, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा. तो जब तक हम ब्रह्म अर्थात परम सत्य के बारे में नहीं पूछते, तब तक हम केवल भौतिक इंद्रिय सुख के बारे में पूछते रहते हैं. तो कहाँ है अच्छा चीज, कैसे ज्यादा पैसा मिलना है, तो कुवैत जाओ, बांग्लादेशी लोग तो भारत जाना चाहते हैं, और भारत के गांव के लोग बॉम्बे जाना चाहते हैं, बॉम्बे के लोग कुवैत जाना चाहते हैं, और कुवैत के लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, और वैदिक संस्कृति में कर्मकांडीय अनुगामी स्वर्ग जाना चाहते हैं. तो उस जगह जिसमें हम हैं, हम पूरा सुख नहीं मिलते, और इसलिए हम सोचते हैं कि दूसरा जगह वो सुख जो अभी नहीं मिलता हूं तो दूसरा जगह में मिलेगा. तो इस प्रकार हमारी आशा है कि अगर स्थानांतरित हो हम सुख मिलेंगे, और इस प्रकार हम असंख्य देह धारण करके सुख का अनुसंधान करते हैं। तो कभी कभी हम खुद का शरीर में सुख का खोज करते हैं, और कभी कभी पक्षी का शरीर में, कभी कभी वृक्ष, देवता, दैत्य, तो सभी प्रकार का शरीर मिलके ये बद्ध जीवन का उद्देश्य एक है। तो कैसे सुख प्राप्त होते हैं? इंद्रिय सुख। तो इस प्रकार स्वर्ग के महान देवताओं जिनके राजा है इंद्रदेव, और छाती में वो खीर जो है, तो ज्यादा दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की चेतना एक ही है, उद्देश्य एक ही है, दोनों इंद्रिय सुख खोजने वाले हैं। तो नथेषु गमते बुद्धः, जो बुद्धिमान है इस भौतिक स्थिति देख के, विचार करके ब्रह्म जिज्ञासा करते, देखते हैं कि पूरा जगत दुखमय है, तो है और कुछ जिसमें वास्तव सुख मिलते हैं? तो ये ब्रह्म अनुसंधान का शुरू। इस भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पूर्ण दुखमय अवस्था के अतीत है कुछ, वो आध्यात्मिक स्थिति क्या है? तो भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करने से, निराश होने से राधा कृष्ण प्रेम प्रीति बहुत दीर्घ यात्रा है, परंतु यही शुरू है। और रास्ते में एक्चुअली बहुत कम लोग उस रास्ते पर जाते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्पतः। कौन है जो आध्यात्मिकवादी है? धार्मिक लोग बहुत है, चाहे भी तथाकथित हिंदू, चाहे भी मुसलमान, चाहे भी क्रिश्चियन, धार्मिक लोग बहुत है। तो आज तक इस घोर कलयुग में, तो कलयुग का प्रभाव इतना सा होने के पर आज तक दुनिया में अधिकांश व्यक्ति स्वयं को धार्मिक मानते हैं। मैं भगवान, मुझे भगवान में विश्वास है, या अल्लाह या गॉड जो भी नाम बोलते, तो धार्मिक है। लेकिन ज्यादा लोग जो धार्मिक है, तो कैसे धार्मिक होते हैं? तो भगवान में विश्वास है, लेकिन भगवान कौन है, भगवान के बारे में कुछ विशेष या स्पष्ट धारणा या विचार नहीं है। ये सोचते हैं कि वो एक शक्ति है या शक्तिमान है या कुछ है कहीं पर, हमें अच्छी तरह मालूम नहीं, लेकिन है कुछ। जिनसे हम आशीर्वाद मिल सकते, जिससे हमारा इंद्रिय सुख का प्रयास में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो, और जिससे हम और भी पैसे मिलेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, बहेस्त जाएंगे, बहेस्त आपको मालूम है स्वर्ग, मुसलमान का स्वर्ग, ढाका, कोई है ढाका से चट्टग्राम, तो ढाका है और सब ऑटो रिक्शा पहचान है सब ने होने के, लेकिन आज से नमाज बहेस्ते छबी बहेस्त अर्थात स्वर्ग जाने के लिए चाबी है नमाज। तो आज तक लोग धार्मिक है, परंतु प्रेम, कृष्ण प्रेम और साधारण धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य धार्मिक लोग का विचार है कि हम स्वर्ग जाएंगे या बहेस्त जाएंगे, और वहां पर भगवान की कृपा से हम विशाल इंद्रिय सुख भोग करेंगे, मतलब उद्धर्म या भक्ति जो कहते हैं वो खुद का कल्याण के लिए है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामय मम जननी जननीश्वरे भवतद् भक्तिर्हाय तुकी त्वयि। अब सब मालूम है चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार हमको सिखाया तो हमारी भक्ति किस प्रकार होना चाहिए। खुद के लिए हम कुछ भी नहीं मांगते, हम भगवान की सेवा करते केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस वो भावना जो न धनम न जानम श्लोक में है, और भी और बहुत तीव्र भाव से प्रकट होते हैं शिक्षाष्टक का आठवां श्लोक में। वो क्या है? शुरू से कहिए, आश्लिष्य पादरतां विनष्टमां अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। चैतन्य महाप्रभु राधारानी की भावना से कहते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, तुम लंपट जैसे हो, तो मुझको आलिंगन करो अथवा मुझको तुम्हारा दर्शन मुझको नहीं दो, आशीष बाप फादर था, अथवा किक मी अंडर योर फीट, कैसे बोलते, लाठी लाठी मारो मुझको, लाठ मारो मुझको, तो जो भी करते हो मुझको तुम मेरा प्राणनाथ हो, मर्महतम मुझको मर्महत करके भी तुम के लिए मेरी भक्ति होगी। श्रीमती कुंती देवी इस प्रकार भी प्रार्थना की, विपदा संतुत शश्वत तत्र तत्र जगत करो भवतो दर्शनं यत्स्यत् अपुनः भव दर्शनं। श्रीमती कुंती देवी प्रार्थना की कि हे भगवान, हे कृष्ण, हमको और ज्यादा विपत्ति दे। तो सब लोग भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारे जीवन में वो सब दिक्कत अंतराय विघ्न जो है
तो दूर करें,
हाँ दूर करो या नाश करो। और कुंती देवी बोली कि हमको और ज्यादा विपत्ति दे, तो ये आश्चर्य की बात है ने? तो किस लिए ऐसे कहते हैं? कुंती देवी बोली कि इसके पहले हमारे जीवन में कुंती रानी है पंच पांडव की माता, और कभी कभी लोग पूछते हैं कि वो पंच पांडव तो भगवान के परम भक्त और दोस्त थे, तो क्यों इतना दुख मिला? तो इस श्लोक में कुंती रानी इसके बारे में कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में बहुत विपत्ति होती है तो तब तक हम आपको तीव्रता से स्मरण करेंगे, और आप भी क्योंकि आप हमारे एकमात्र रक्षक है तो आप भी हमको विशेष ख्याल रखेंगे। तो इस प्रकार आपके चरण कमलों का स्मरण करके हम भवसागर का पार करेंगे, हम उस धाम जाएंगे जिसमें और कुछ भी विपत्ति नहीं होती। तो इसलिए अच्छा हो अगर दुख दुर्दशा हो, तो यही आश्चर्य है ना? कौन ऐसा प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मुझको दुख दो, किसी का साहस से इस प्रकार प्रार्थना करना? तो अगर भगवान की इच्छा हो तो कितना दुख हमको दे सकते, भगवान सर्वशक्तिमान है, तो सबके दुख होते हैं हमेशा, जैसे मुझे अभी तो थोड़ा जुकाम है, तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आई सबका हमेशा सब सिर दर्द होते हैं या चिंता होती है, तो सबका दुख होते हैं, लेकिन भगवान हमको और बहुत 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 असीम दुख दे सकते हैं। दुख की सीमा नहीं है, बहुत दफे लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि मुझे ये समस्या है, वो बड़ी समस्या है, और मैं जवाब देता हूँ कि मैं हमेशा इस प्रकार की बात सुनते हूँ, और एक्चुअली आपकी समस्या इतना बड़ी नहीं है। हे बहुत लोग जिनके समस्याओं आज से और कम से कम 1000 गुण अधिक है, और आपकी समस्या जो है वो और बहुत खराब हो सकते, तो चिंता मत करो, ये दुख जो है वो सामान्य है। तो भगवान अगर चाहे, जो भगवान हमको दुख देने वाले नहीं है, अपना काम का फल हम भोग करते हैं, लेकिन भगवान अगर चाहते हैं तो हमको कितना दुख दे सकते, जो अपार दुख जो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कुंती देवी ऐसी प्रार्थना की तो हमको विपत्ति दुख दुर्दशा दे जिससे हमारी भक्ति आपकी आपके चरण कमलों के लिए बहुत प्रबल होगी और इससे हम अधिकार मिलेंगे वो असीम सुख का राज्य में प्रवेश करने के लिए, अर्थात भगवान का धाम। तो इस भौतिक जगत में दुख होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। तो भक्ति करके वो दुख का सहना, दुख सहना चुनादपि सुनिचेन थरोरपि सहिष्णुता वलना सहज बोलना सा, तो फिर भी बोलना चाहिए। अगर हम नहीं बोलते तो हम कैसे अभ्यास करेंगे? तो कम से कम धारणा मन में रखना चाहिए जिससे हम सहिष्णुता और सुनिश्चित दैन्य हम अभ्यास कर सकते। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि ही। तो कीर्तन करना सहज है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन चुनादपि सुनिच भाव वही कठिन है। और तरोर अपि सहिष्णुता वही भाव वो भी कठिन है। तो फिर भी अभ्यास करना चाहिए। तो ये किराया है, हम यात्रा के बारे में बोलते हैं। तो इस दुखमय जगत से परम प्रेमानंद जगत का सफर वो किराया क्या है? चुनादपि सुनिचेन थरोरपि सहिष्णुना अमान ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो कम से कम प्रयास करना चाहिए। और यदि हम चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के प्रदत्त साधना नियमावली के अनुसार भक्ति साधना करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी प्रभु और सब परंपरा आचार्यों की कृपा से, विशेषकर हम श्रील प्रभुपाद के आश्रित है, श्रील प्रभुपाद का परिवार में है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो बहुत ही लंबी यात्रा इस दूषित दुखमय अवस्था से परम प्रेम धाम तक जाना हम आचार्यों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हम आसाने से इस यात्रा कर सकेंगे। तो आप सब बहुत दूर से आए थे, भारत और बांग्लादेश से और कोई दूसरे देश से आए, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, तो दूर से आया है और बहुत दूर जाना है। भारत से गोलोक धाम वाया कुवैत कुवैत होकर गोलोक जाना है, लेकिन एक्चुअली जो व्यक्ति सदैव चुनादपि सुनिचेन थरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि ही इस अभ्यास करते हैं तो वो व्यक्ति ऑलरेडी गोलोक धाम में है। यह यस्य हरे भक्ति, वो श्लोक क्या है? यह यस्य हरे भक्ति अभी तो याद नहीं है. कामना मनसा गिरा निखिलस्यप्यवस्था सु जीवन मुक्त से उच्चते यहाँ यस्य हरे दास्य कामना मनसा गिरा. जो व्यक्ति इह अर्थात इस जगत में सदैव हरिदास्य कहते हैं अर्थात हरि से हरि भक्ति करते हैं. कर्मणा मनसा गिरा अर्थात कर्म कलापों से कर्म मनसा मन से और गिरा अर्थात वचनों से. तो वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में स्थित होने के पर जीवन मुक्त है अर्थात वो व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ. उनका संबंध है भगवान कृष्ण के साथ. जैसे मेरा परम सौभाग्य हुआ ये दो अंकों से श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों का साक्षात दर्शन मिला युव काल में और आधुनिक विज्ञान का प्रदान से आप अभी तक वीडियो वीसी क्या क्या बोलते हैं वीसीडी से प्रभुपाद के चरण कमलों का दर्शन कर सकते हैं. और देखने से महसूस करते हैं कि यही व्यक्ति हमारे बीच में होने के पर हम जैसे नहीं. श्रील प्रभुपाद तो बंगाली नहीं थे भारतीय नहीं थे. श्रील प्रभुपाद साक्षात गोलोक के दूत थे. उनका कुछ संबंध संस्पर्श नहीं था इस भौतिक जगत के साथ. उनकी कृपा से गोलोक धाम से आए थे हमको खींच के लाना हमको ले जाना गोलोक धाम पर. तो क्या प्रमाण है कोई कोई बोलते हैं क्या प्रमाण है कि भगवान ही है. तो मेरे लिए यही मुख्य प्रमाण है श्रील प्रभुपाद. तो अगर भगवान नहीं है एक्चुअली ये प्रस्ताव भी बेकार है कि कोई भगवान नहीं है. लेकिन प्रभुपाद जैसे व्यक्ति नहीं हो सकता अगर भगवान नहीं है. जो भगवान में विश्वास नहीं है भगवान को विश्वास नहीं करते हैं तो क्या बात है. श्रील प्रभुपाद की भक्ति सब क्या मिथ्या वो सब मिथ्या थी. एक कुछ क्या बात है साइकोलॉजिकल ट्रांसम्यूटेशन एक मानसिक परिणाम सिर्फ मायक नहीं. श्रील प्रभुपाद की भक्ति वो भक्ति से श्रील प्रभुपाद की कृपा से श्रील प्रभुपाद की भक्ति से उनकी भक्ति जो उनका व्यक्तित्व में उज्ज्वल रूप से प्रकट थी वो ही वास्तव थी. उनकी भक्ति देखने से उनका तेज देखने से वो खाली देखना नहीं अनुभव करना हम एकदम विश्वस्त हुए कि श्रील प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति नहीं है. वे हमसे बहुत 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 ऊपर है. उनकी कृपा से हमारे बीच में उपस्थित है हमको गोलोक वाणी देने के लिए, हमको उद्धार करने के लिए। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो वास्तव में एक्चुअली हम सब कम से कम हाफ बंगाली है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। चैतन्य महाप्रभु बंगाली चिलन ना, किंतु उन्हें संप्रदाय नाम होते गौड़िया संप्रदाय एवं गौर मतलब मालदा, मालदा काचे नवाब हुसैन शाह का राजधानी था, अभी तो फिर हिंदी बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये गौड़िया शब्द है, ये शब्द एक खूबी गुज्जर अर्थ आचे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलें जे वैष्णव हे एक समान शब्द जा अर्थ हे भगवान विष्णु के उपासक, और एक शब्द आचे से भगवते पावा जाए कृष्ण। कृष्ण अर्थ हे दारुकाय भगवान कृष्ण कुटुम्बर, और एक अर्थ आचे कृष्ण भक्तर। वैष्णव आचे कृष्ण आचे, और एक शब्द आचे गौड़िया। गौड़िया मने वैष्णव आचेन कृष्ण भक्त आचेन, किन्तु विशेष करे जारा राधार भक्तरा तारा गौड़िया बोले। गौड़िया संप्रदाय वैशिष्ट्य आचे जे आम्रा परमाराध्य सर्वशक्तिमान कृष्ण के माने, किन्तु की भावे आम्रा माने, आम्रा माने जे से जे से सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण हचेन श्रीमती राधिकार सेवक। तो ये चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय एक वैशिष्ट्य, ये खुबी गुज्ज कथा। समान लोक एक कथा बुझते पारे ना, एवं कि अनेक बड़ बड़ वैष्णव आचेन मान्य वैष्णव जरा भक्ति रहे, किंतु चैतन्य महाप्रभु যা আমাদের দিয়ে গেছে অনর্পিত চরিং চিরাৎ করুণাবতীর্ণ কল সমাপিয়ত মনোতজ্জ্বল রস শ্রভক্তি স্বয়ং, তারা বুঝতে পারে না। চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের কি দিয়ে গেছে যা অনর্পিত ছিল চরিং চিরাৎ অনেক চিরকালে, যা কেউ দিয়েনি। যদি কি মহাপ্রভুর কৃপায় ইনি তার অনথজ্জ্বল রস ভক্তি আমাদের দিয়ে গেছে, অনর্থ উজ্জ্বল রস। তো সেই তো চৈতন্য মহাপ্রভুর আমাদের দিয়ে গেছেন তার কারণায় এই কলি যুগে। এবং মহাপ্রভুর অবদান হচ্ছে তো শুধু ভক্তি নয়, ভক্তি তো খুবই বড় কথা আছে, ভক্তি তো কখনো সাধারণ হতে পারে না। তবু মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছেন না আমাদের যা প্রদান করেছে সেটা সাধারণ ভক্তির অনেক ঊর্ধ্বে। তো সেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর একটা বৈশিষ্ট্য, এবং আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে যে তো কিভাবে আমাদের দিয়ে গেছে। মহাপ্রভু বলেন না তপস্যা করো, মহাপ্রভু বলেন না খুব জটিল ভাবে সাধনা করো, মহাপ্রভু বলেন না খুব কঠিন তীর্থযাত্রা যজ্ঞ অনুষ্ঠান এইসব করা, মহাপ্রভু বলেন না। মহাপ্রভু বলেন হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, রাম হরে রাম 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 হরে হরে। প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র, ইহা জপ গিয়ে করে, ইহা জপ গিয়ে সবে করে নিবন্ধ, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবা, সর্বক্ষণ কহ নাম বিধি নাহিয়া। চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলাদেশে নিবাসীদের উপদেশ দিয়েছেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ এবং কীর্তন করতে। মহাপ্রভু বলেছেন যে প্রভু কহে, মহাপ্রভু বলেছেন কহিলাম এই তো মহামন্ত্র, কহিলাম এই মহামন্ত্র, ইহা জপ গিয়া সবাই করিয়ে নিবন্ধ, তো সবাই এই মহামন্ত্র জপ করুন নিবন্ধ। এই নির্বন্ধ শব্দ এর অর্থ কি? এটি সাধারণ বাংলা শব্দ নেই, এর অর্থ হচ্ছে এই ভক্তি সাধনা সব নিয়ম পালন করে। মানে ওই বাংলাদেশে যা প্রচলিত আছে হরি হরি বল ও মাগা মাছে ঝোল, তো সেই রকম চলবে না, সে যে মহাপ্রভুর শিক্ষা নেই, এটা প্রাকৃতিক সহজিয়ত যা আমরা সব কিছু করতে পারি এবং হরি নাম করি এবং সেইটা ভক্তি। দেখেছি ওই নাম যজ্ঞ হয় না, এইসব দোল আসে তাদের দুই ঘন্টা কাল অভিনয় কীর্তন অভিনয় করা হয় এবং ওই দুই ঘন্টা সঙ্গীত, আমরা কীর্তন বলে না, সঙ্গীত করার পরে তারা পেছনে গিয়ে বিড়ি সেবা করে। আপনারা দেখেছেন নাকি? তো সেটা মহাপ্রভুর শিক্ষা নেই। মহাপ্রভুর শিক্ষা হচ্ছেন শুদ্ধভাবে, শুদ্ধ চিত্তে, শুদ্ধ আচরণে কৃষ্ণ ভক্তি সাধিত করা হয়, করিয়া নিবন্ধ। ইহা হইতে অর্থাৎ এই শুদ্ধ হরিনাম থেকে সর্বসিদ্ধি হইবে সবা, কত সহজ আপনার বুঝতে পারেন, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবা। সর্বসিদ্ধি এর অর্থ হচ্ছে প্রেম সিদ্ধি, আমাদের আর কোনো অন্যরকম সিদ্ধি প্রাপ্ত করার কোনো ইচ্ছা নেই। সর্বসিদ্ধি হইবে সবা, সর্বসিদ্ধি এর অর্থ কি? আমরা ধন জন সুন্দরী পাব না, সর্বসিদ্ধি হচ্ছে না ধনম না জানম না সুন্দরী, এইসব ছেড়ে ওই সকল ইচ্ছা ওইসব প্রাপ্ত করার জন্য ছেড়ে আমরা শুধুমাত্র কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি চাই। তো সেই কৃষ্ণ প্রেম তা স্তম্ভ হচ্ছে সেবা ভাব। সর্বসিদ্ধি হইবে সবা, সকলে অধিকার আছে হরি নাম কর, শুধু বেঙ্গালীদের জন্য নয়, শুধু হিন্দুরা জন্য নয়, শুধু শিক্ষিত জন্য নয়, শুধু অশিক্ষিত জন্য নয়, যে কোনো অবস্থায় আমরা হরি নাম করতে পারি। খাইতে শুয়েতে যথাযথা নাম লয়, দেশ কাল নিয়ম নহি সর্বসিদ্ধি হয়, সর্বসিদ্ধি হইবে সবা, সর্বক্ষণ কহ নাম বিধি নাহিয়া। তো এই মহাপ্রভুর অবদান, শিল প্রভুপাদের কৃপায় সেই প্রেম সাগর যে মহাপ্রভু এনেছেন, যা দ্বারা বিশেষ করে বাংলাদেশে সব লোক প্রেম জলে ডুবে গেল, সেই প্রেম সাগর এখন প্রভুপাদের কৃপায় মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ করার জন্য সেই প্রেম জল এখন সারা পৃথিবীতে সরে গেছে, এবং যারা ভাগ্যবান, যারা বুদ্ধিমান, যারা সুকৃতিবান, তারা অবশ্যই এই সুযোগ নেবে এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ এবং কীর্তন করে তাদের দুর্লভ মানব জন্ম সফল করবে এবং কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত করবে। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। তো আপ সব ভক্তি করতে হ্যাঁ না, আপ সব রাস্তে মে হ্যাঁ, ও মানে হ্যাঁ ওকে, এক ঘোষণা হ্যাঁ পহলে অ্যাকচুয়ালি। হরে কৃষ্ণ। মানে এক সেট সিডি লাইয়া হুম ইংলিশ প্রবচন মোস্টলি, ওর মানে সিডি একটা সিডি আছে যার মধ্যে 16টা বাংলা প্রবচন রয়েছে। তো আপনার যদি আপনাদের কাছে MP3 প্লেয়ার আছে নাকি? তো বেঙ্গলি সিডি আছে, আমরা শুধু একটা মাত্র নিয়ে আসছিলাম, এখন কপি করা হচ্ছে, তো আপনারা নিতে পারবেন। এবং আরও আছে ইংলিশে প্রবচনের সিডি, দেখিনি, মেবি দেয়ার সাম হিন্দি সিডিজ দেয়ার অলসো, আই এম নট শিওর। আপনি বলতে চান তো কি বলবেন? যাতে বারবার উত্তর দেওয়ার দরকার হচ্ছে না। You have that book?
Yes, I have that.
My memories of Srila Prabhupada. Shankhepe bolchi je isava pratame Prabhupada darshan peche ta ek grantha madhyame. Krishna book, volume 2. Ah, I'll write here in English. My memories of Srila Prabhupada. Amar bhakti gata Prabhupada smaram, smriti. So, আমি সর্বপ্রথমে 1975 শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাদের এক গ্রন্থ রূপে, সে বই হল কৃষ্ণ দ্য সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গডহেড দ্বিতীয় খণ্ড। এ কভার তো খুবই উজ্জ্বল এবং সুন্দর ছিল, এবং কৃষ্ণ বলরামের খুব সুন্দর চিত্রপট ছিল, এবং পেছনে শ্রীল প্রভুপাদের খুব সুন্দর চিত্রপট ছিল। সো এনিওয়ে ইটস ইন হিয়ার, ইফ ইউ ডোন্ট নো ইংলিশ সরি। মুঝকো দে রাহা হুম ইতনে সব, মে ইতনা ভুকি নাহি হুম।
হরে কৃষ্ণ মহারাজ।
ও ও ভুকি হ্যায়, ও মাঙ রাহে হ্যায়। You're begging some from him, is it?
Haribol.
Haribol, Haribol, bolte. Haribol, Haribol.
Haribol. Joseph, Haribol.
All right. Aur kuch prashna hai? Actually, acha ho hum Hindi mein baat karenge, nahi kyunki sab to acha baat. Sab to adhikansh vyakti Bengali hai, lekin aur bhi jo Bengali nahi samajhte.
Hare Krishna Maharaj.
হরে কৃষ্ণ।
আমরা तो हम लोग अभी तक दीक्षा मिला नहीं है और सदगुरु भी अभी तक दीक्षा मिला नहीं, तो हमारा क्या हमको भक्ति मिलता नहीं, कृपा की मिलता नहीं?
नहीं, ऐसे नहीं है कि दीक्षा के पहले भक्ति नहीं होती। दीक्षा ग्रहण करने के लिए तो प्रस्तुत होना चाहिए न? एक प्रकार का गुरु है जो मैंने सुना एक बार, वो क्या है, वो चंद्रनाथ यात्रा और छत्तग्राम और शीतकुंड ने, तो एक बार अनेक बार प्राय 30 बच्चों आगे আমি শুনেছি, আমি ওই চন্দ্রনাথ মেলায় ছিলাম, আমরা প্রভুপাদের বই বিতরণ করেছি, তো মাইক সে শোনা এই গুরু উপস্থিত থা ও মাইক সে অ্যানাউন্স কিয়া তো স্বামীজি দীক্ষা দে রা হে, আগর কোই দীক্ষা লেনা চাহতে হে তো যাও পান্ডাও মে দীক্ষা লে লো। লেকিন ইয়ে शास्त्रीय अनुमोदित रीति नहीं है, तो शास्त्र में मतलब ये गुरु शिष्य संबंध बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है। तो प्रारंभिक भक्ति करना है, मतलब दीक्षा लेने के पहले आश्रय लेना है। रूप गोस्वामी कहते हैं तो भक्ति में क्या है, आदाव आदो गुराशय कृष्ण दीक्षा अनुशिक्षण, तो दीक्षा लेने के पहले आश्रय लेना है, और आश्रय कैसे लेना है, उपदेश ग्रहण करने से, मतलब केवल गुरु का तस्वीर कमरे में रखना वो शिष्यता नहीं है, वो उपदेश जो मिलते हैं उसको ध्यान से श्रवण करना है, और व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में पालन करना चाहिए। तो फिर वो गुरु शिष्य संबंध इस प्रकार स्थापित होते हैं, और जब वो गुरु संतुष्ट होते हैं यही कि ये सही शिष्य है, और जब शिष्य भी आश्वस्त है कि ये व्यक्ति सद्गुरु है, ढोंगी नहीं है, और मुझको वो भक्ति पथ दिखाने के लिए समर्थ है, तो जब दोनों पूरा संतुष्ट है कि यही सही गुरु है, ये सही शिष्य है, तो फिर वो औपचारिक रूप से वो दीक्षा संबंध स्थापित होते हैं, अर्थात दीक्षा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आ जाओ दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। तो आप भक्ति करो गुरु कृष्ण प्रसादे भाई भक्ति लता बीच, भगवान कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से कृष्ण भगवान को मिलते हैं। दैट बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण प्रबोधिनी है ना,
हाँ,
तो इसके मतलब ये गुरु तत्व बहुत बड़ा विषय है। तो संक्षेप में मेरी एक पुस्तक में बिगिनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, बांग्ला की बोले नवीन भक्ति दे जन्नो, नवीन भक्ति दे जन्नो अनुशीलन पंथ, भक्ति अनुशीलन पंथ, तो मध्य किछु चर्चा करेछि कि गुरु मने कि शिष्य मन, और इस्कॉन में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, let them sit down, let them stand, कुछ नियम भी पालन करने हैं, आपको मालूम है चार नियम, एक्चुअली चार हम बोलते हैं चार नियम, मांसाहार वर्जन और Jua Ityadi Kelna Varjan, Avaidya Stri Sangha Varjan, or Nesha, or Sabi Prakaka Nasha Varjan, or Chan Niyam, hey, lekin actually or bhi niyam hai, wo char mukhya niyam hai, lekin there's much more. Aap vastav shishya nahi ho sakte, agar aap TV dekhte hain, cinema jaate hain, to shishya ka matlab sharanagati ke rastapa. Sharanagati ka matlab anukulyasya sankalpa pratikulyasya vajanam rakshishyatiti vishvaso guptritvevaranam tata atmanikshepa kalpanye sharvidha sharanagati. Arthat sab kuch jo hum karte hain to wo bhakti ke liye anukul honna chahiye aur jo pratikul hai bhakti ke liye hum nahi karte. Isliye aur bhi niyam hai. Cinema jana se bhakti vardhan nahi hote, bhakti nash ho jate, isliye wo वर्जित है. ये एक उदाहरण है और बहुत है. तो मतलब हमारा जीवन का उद्देश्य कि इस जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, आत्मसमर्पण. तो यही उद्देश्य होना चाहिए, फिर हम सही शिष्य हो सकते. तो गंभीरत्व के साथ भक्ति करना चाहिए. अगर गंभीरत्व तो नहीं है तो भक्ति नहीं होती. सो तो ये सब बात का विचार करना चाहिए. वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली. और अगर हम ऐसे सीरियस है, गंभीर है, तो भगवान की कृपा से हम सब मार्गदर्शन मिलेंगे, सब सहायता हम मिलेंगे भगवान की कृपा से. भगवान अंतर्यामी है और हमारा हृदय में क्या इच्छा है, क्या उद्देश्य है, क्या भावना है, भगवान सब कुछ समझते हैं. और भगवान दयालु है. अगर हमारी इच्छा है गोलोक जाने के लिए तो भगवान हमको सहायता करेंगे.